जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राध पार्थ सारथी की श्री श्रीनिताय गौर सुंदर की श्रील श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की हिताई गौर प्रेमानंदे। सब मेरे पीछे दौड़ आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। तो आज एक विशेष आगे आ जाइए। तो आज एक विशेष दिन है। कौन सा दिन है आज? हाँ, श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव है। तो हम थोड़ी देर के लिए उनके बारे में सुनेंगे। तो आप सब काफी देर से अब बैठे होंगे, हमारा आगमन बहुत लेट हुआ। तो श्रीवास ठाकुर तो दो प्रकार के महामंत्र हैं। एक तो मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं इस जगत में पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंच तत्व लया करे संकीर्तन रंगे। तो कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन है चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण है। जैसे हम हर बार सुनते हैं प्रभुपाद लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने पूछा अपने शिष्यों को कि बताओ चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो अलग अलग भक्तों ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के विस्तार हैं आदि आदि। तो फिर प्रभुपाद ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। फिर प्रभुपाद ने बोला श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है। तो इसलिए कलियुग के जीव सबसे अधिक बहुत सौभाग्यशाली हैं, और विशेष रूप से वो जीव जिनको चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का संग लाभ हुआ है, या फिर जो जीव चैतन्य महाप्रभु का ये जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से क्या हो गए हैं? जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और यही एक ऐसा संप्रदाय है कि जिसमें साक्षात भगवान स्वयं अवतरित होते हैं भक्त के रूप में, और भक्त के रूप में अवतरित होकर सबको कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने साथ आते हैं तो अकेले नहीं आते। जैसे प्रभुपाद कहते राष्ट्रपति आ रहा है या प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ विजिट कर रहा है तो वो अकेले नहीं आएगा, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग नेता पद नेता आदि होते हैं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो आपने अलग अलग भक्तों को लेकर आते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण सांगो पांगार्ष पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो एक ऐसा अवतार होगा जो स्वयं कृष्ण है लेकिन अपनी अंग कांति को छोड़कर दूसरी अंग कांति धारण करेंगे और क्या करेंगे, कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करेंगे। किसका उच्चारण करेंगे?
कृष्ण।
जोर से
कृष्ण।
तो कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करेंगे ऐसे वो अवतार होंगे। और सांगोपांग पार्षदम स अंग अपने डायरेक्ट विस्तार और उनके विस्तार उनको लेकर इस जगत में अवतरित होंगे। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु कि ये जो विस्तार है पंच तत्व क्या है, चैतन्य महाप्रभु का ही अपने आप में एक विस्तार है। और उनके इस विस्तार का उद्देश्य क्या है कि हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण का जो स्वाभाविक प्रेम है वो प्रदान करना। क्योंकि संसार में हम सबको एक ही चीज की भूख लगी हुई है और वो किस चीज की है, प्रेम की है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि वास्तव में ये भूख तभी मिटेगी जब व्यक्ति शाश्वत कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना का विकास करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, अपने साथ प्रेम धन को लेकर आते हैं। और वो प्रेम धन जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य प्रेम धन है, मतलब भौतिक या आध्यात्मिक रूप से उसकी कोई तुलना या मूल्य नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु अपने साथ लेकर आए। और कहाँ का प्रेम धन है ये, गोलोक वृंदावन का, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, और सबको दे रहे हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी ऐसी दशा है कि ऐसे प्रेम धन में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और अपना विस्तार पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। तो पंच तत्व क्या है कि चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये प्रणाम मंत्र है। पंच तत्व का प्रणाम मंत्र क्या है, ये प्रणाम मंत्र है। दूसरा प्रणाम मंत्र चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम तभी पूर्ण कहलाता है या चैतन्य महाप्रभु उस प्रणाम मंत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते। कौन से, श्री कृष्ण चैतन्य, जोर से, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रणाम जब हम करते चैतन्य महाप्रभु को, इसके उच्चारण से चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम वास्तव में पूर्ण होता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण स्वरूप है इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त है और नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप है और अद्वैताचार्य क्या है, भक्त अवतार है। और भक्ताख्यम, भक्ताख्यम मतलब जिनके पास भक्ति देने का सामर्थ्य है या जो प्रेम से भरे हुए हैं भक्त, ऐसे कौन है, श्रीवास ठाकुर। कौन है, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। तो गदाधर भक्ति शक्तिकम, तो जो भगवत शक्ति है भगवान की वो गदाधर पंडित हैं, और जो साक्षात भक्त के भक्त हैं या भक्तों के जो शिरोमणि हैं या गौर भक्त वृंद, ये शब्द सुना है आपने, गौर भक्त वृंद मीन्स एकटा समूह। हाँ, जैसे वृंदावन, वृंदावन मतलब जो वनों का समूह है उसको भी वृंदावन कहते हैं। तो उसी प्रकार से भक्तों का समूह है गौर भक्त वृंद। तो ऐसे जो श्रीवास पंडित हैं या श्रीवास ठाकुर हैं वो सारे भक्तों के हेड हैं, क्या है, मुखिया हैं, प्रमुख हैं या भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है प्रेमेर ठाकुर गोरा, क्या कहा जाता है, ये प्रेम शब्द चैतन्य महाप्रभु के हर लीला में और हर भक्त के साथ जुड़ा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेमेर ठाकुर गोरा। तो नित्यानंद प्रभु कौन हो सकते हैं? हाँ, गेस करिए, बताइए। प्रेम प्रदाता नित्यानंद राम क्या है? जोर से। हाँ, तो जो प्रेम है जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए, वो देने का एक प्रकार का सामर्थ्य किसके पास है? नित्यानंद प्रभु के पास। इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, मार खाय प्रेम दे दयालु तो नाये हैं, कि नित्यानंद प्रभु स्वयं मार खा लेते हैं लेकिन उसको प्रेम देकर ही रखते उस व्यक्ति को। चाहे उसको कोई, उनको कोई पत्थर भी मारे तो वो पत्थर उठाकर उसको नहीं मार रहे हैं, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं उस व्यक्ति को? कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और जो अद्वैत आचार्य हैं उनको कहा जाता है प्रेमेर भंडारी। क्या कहा जाता है? भंडार होता है ना, स्टोर हाउस। तो अद्वैत आचार्य प्रेम के भंडार है और नित्यानंद प्रेम प्रदाता है, और गदाधर पंडित कौन है? प्रेममय तनु। कौन है? जिनका शरीर प्रेम से भरा बना हुआ है। राधा रानी का शरीर कैसे बना हुआ है? प्रेम से। तो इसलिए गदाधर पंडित राधा रानी से अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु श्री बलराम है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, और गदाधर पंडित प्रेममय तनु श्रीमती राधा रानी है, और कौन बचे? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि है। तो श्रीवास ठाकुर भगवानेर भक्त जत श्रीवास प्रधान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जितने भी भक्त है इस संसार में, उनमें जो टॉप मोस्ट है या प्रधान डिवोटी है वो श्रीवास पंडित है, श्रीवास ठाकुर है। इसलिए किसी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा को सरलता से स्वीकार करना है तो उस व्यक्ति को श्रीवास ठाकुर की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। इसलिए श्रीवास ठाकुर वो आचार्य है जिनका जीवन चैतन्य महाप्रभु के लिए 100% शरणागत है, या जिनका जीवन कृष्ण नाम के उच्चारण से भरा हुआ है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर का जो प्राकट्य है, अभी तो बांग्लादेश है, वहां एक स्थान है सिलेट जिसको श्रीहट्टग्राम कहा जाता था, वहां प्रकट हुए थे श्रीवास ठाकुर। और श्रीवास ठाकुर वो स्वयं ही एक ग्रंथ में कहते हैं, श्रीवास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु उनसे बात करते हैं, श्रीवास ठाकुर कहते कि जब तक मेरी आयु 16 साल की नहीं हुई थी, 16 साल की आयु तक मुझे कृष्ण में बिल्कुल अनुराग नहीं था, मैं इतना दुराचारी चंचल मन वाला था और ब्राह्मणों का निंदक था आदि आदि वो वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं लेकिन जब मेरी आयु 16 साल की हुई तो एक समय मुझे एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में मैंने एक महापुरुष को देखा। उस महापुरुष को मैंने देखा और वो महापुरुष मुझे कहता है, अरे चंचल बालक, हाँ तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी जो आयु है वो स्वल्प आयु है और निश्चित रूप से 1 साल के बाद तुम अपने शरीर को त्यागने वाले हो, मरने वाले हो। क्या स्वप्न आया उनको? कि 1 साल के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। बल्कि उनके पास 1 साल था, प्रभुपाद कहते हैं जब उन्होंने भागवतम का तात्पर्य लिख रहे थे और परीक्षित महाराज को शाप मिला कि आपको, आपके पास 7 दिन है जीवित रहने के लिए, तो प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज बहुत भाग्यशाली थे, भागवतम को सुनने के लिए उनके पास 7 दिन थे, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली, हमें यह भी पता नहीं है कि मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज से भी अधिक हमें लालयित होना चाहिए श्रीमद् भागवतम या कृष्ण से संबंधित विषयों को निरंतर सुनने के लिए। तो ऐसे जैसे उन्होंने स्वप्न देखा तो अचानक उनकी नींद टूटती और वो डरने लगते हैं। सोचो जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जैसे टाइम को देखा तुरंत अपना लाइफस्टाइल, अपनी इमरजेंसी जो जीवन में है वो बदल डाले। सोचो जो लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि की इतनी बड़ी आयु थी, ब्रह्मा के समान ही उनकी आयु थी एक प्रकार से, लेकिन जब उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम आपके लिए कुटिया बनाना चाहते हैं, हाँ उस कुटिया में बैठकर आप आराम से भजन कर सकते हैं। तो लोमस ऋषि ने कहा, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो, मेरे पास कितना समय है, बहुत कम है। लोमस ऋषि के पास करोड़ों अब्जावधि आयु थी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं क्यों इन भौतिक कार्यों में समय व्यस्त कर रहे हो, इससे अच्छा है कि मुझे क्या करने दो, हरे कृष्णा जोर से,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो ऐसे लोमस ऋषि भी ये सोचते हैं, इसलिए गोविंद कविराज अपने गीत में लिखते हैं, कमल दल जल जीवन टलमला। हमारा जीवन कैसे है, कमल के पत्ते पर एक पानी की जो बूंद है द्रव, और वो कभी भी नीचे गिर सकता है, वैसे ही हमारा जीवन है, कभी भी ये बूंद हमारे जीवन के नीचे गिर सकती है और हमारा अस्तित्व नष्ट हो सकता है। लेकिन हम सीना तानकर सारे संसार को दिखाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व किसका है, तो किसका है, मेरा है। और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम दिन रात कितना कठोर मेहनत या संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को दो चीजें करनी चाहिए, भजन साधु समागम, साधुओं का संगति करो, सत्संग करो, कृष्ण कथा को सुनो, और दूसरा है स्मर अनित्यता, और अपने जीवन की जो अनित्यता है उसका निरंतर स्मरण करो। ये दो चीजें हमेशा करती रहनी चाहिए। भक्तों का सहचर्य संग हम करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि मेरा जीवन शाश्वत नहीं है, अनित्य है, नित्य समय के लिए मैं नहीं हूं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज भी कहा करते थे, हमें दो ही चीजों का स्मरण रखना चाहिए। कौन सी वो दो चीजें, मृत्यु और हरि नाम, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोर से हरे राम 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 हरे।
तो जैसे श्रीवास ठाकुर सुबह उठे वो डर गए। आजकल व्यक्ति बहुत सारे लोग जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कुछ बोल देता है 10 साल के बाद ये होगा, वो उसी दिन से डरने लगता है। तो यहाँ श्रीवास पंडित सुबह उठे, उन्होंने सोचा आयु तो अल्प आयु है, कितनी आयु है, अल्प आयु, हमें अपने जीवन में अल्प कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दीर्घ अच्छा लगता है, अल्प में कम छोटी चीजें अच्छी नहीं लगती, हमें हमारे जीवन में सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। तो उसी प्रकार से उन्होंने जैसे ही सोचा मेरे पास अल्प आयु है स्वल्प आयु है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कुछ मंगल कार्य करते हैं। व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति सोचता है ना, कुछ लोग मंदिर चलते हैं, दान देते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, थोड़ा जप कर लेते हैं, हाँ तो ऐसे सोचते हैं। तो ये उठे, इन्होंने सोचा कुछ मंगल करना होगा, और मंगल क्या है, उन्होंने सोचा एक बुक पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, ग्रंथ उन्होंने उठाया। अभी नारद मुनि है तो कौन सा ग्रंथ उठाएंगे बताइए, नारद पुराण, कौन सा उठाया नारद पुराण उन्होंने उठाया और वो पढ़ने लगे। जैसे ही नारद पुराण पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते ही उनको एक विशेष श्लोक उसमें नजर आया, और वो श्लोक था, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी सन्यासी हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, वो सारे सन्यासी मायावादी सन्यासी वेदांत आदि का अध्ययन करते थे, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते थे, उनका उच्चारण करते थे, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे सन्यासी थे जो रोड पर जाकर नृत्य करते थे, गाते थे, कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर हरिनाम का उच्चारण करते थे। तो उन सन्यासियों ने कहा, अरे तुम ऐसे कैसे भावुक की तरह नाच रहे हो गा रहे हो रास्ते पर, आपको हमारे संग में आकर वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्म सूत्र आदि को पढ़ना चाहिए, शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य का अध्ययन करना चाहिए, ये कहा पागल की तरह लोगों को पागल बनाकर रास्ते में करताल मृदंग आदि के साथ हरे नाम का उच्चारण करते हुए नाच रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा,
मेरे यही क्वालिफिकेशन, मेरे पास यही योग्यता है। मैं जब अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गया और आध्यात्मिक गुरु को मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आध्यात्मिक गुरु ने क्या कहा था चैतन्य महाप्रभु को, गुरु मोरे मूर्ख देखी करील शासन। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे मूर्ख की तरह समझा और शासन की ओर कहा मुझे, उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि तुम क्या करो, केवल एक ही चीज करो, ये जो कृष्ण नाम है, उन्होंने मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया और कहा कि तुम क्या करो, सदैव हरे कृष्णा जोर से, हरे राम 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 हरे। और मेरे गुरु ने मुझे एक श्लोक सिखाया और वो श्लोक भी कौन सा था, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यतः। तो जितना भी शास्त्रों का अध्ययन है, तीर्थों का भ्रमण है, तपस्या की परम सिद्धि है, दान का परम लाभ है, या हर कार्य का जो परम लाभ कुछ है, परफेक्शन कुछ है, तो वो है कृष्ण नाम की शरण ग्रहण करना। हमारे जीवा से भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण होगा होना, ये वास्तव में सारे कार्यों का परम सार है। तो यहां श्रीवास पंडित कहते हैं, जैसे मैंने वो श्लोक पढ़ा जिसमें बारंबार कहा है हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, हम भक्त लोग कहते हैं क्यों तीन बार बोला गया है, कई सारी व्याख्या है, लेकिन जनरली कहते हैं कि कलयुगा के लोग इतने मंद बुद्धि के हैं कि उनको एक बार बोलने से समझ में नहीं आता, उनको कितनी बार बोलना पड़ता है। घर में जब पति कहता है पत्नी को पानी लाओ, एक बार सुनाई नहीं देता, कितनी बार बोलता है पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, शादी के तुरंत बाद तुरंत सुनाई देता है, लेकिन जैसे दिन बीतते हैं सुनाई कम देता है। तो कलयुगा के शुरुआत में हमें सुनाई दे रहा था भगवान का उपदेश, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसा वैसा कृष्ण का उपदेश हमें एक बार सुनने से समझ में नहीं आता। इसलिए कलयुगा के लोगों के लिए कहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवलम बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम इधर उधर ना देखें, केवल हरे के पवित्र नामों का ही आश्रय ग्रहण करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब नवद्वीप के भक्त मिलने के लिए आए थे और वो सारे भक्त जब वापस जा रहे थे नवद्वीप, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, हाँ तो वो कैसे प्रकट होगा कि आप मुझसे प्रेम करते हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप क्या करो, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और चीज का वर्णन या किसी और नामों का उच्चारण नहीं करो, हरे कृष्णा जोर से, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर श्रीवास पंडित, तो इन्होंने जब ये पढ़ा तब से उन्होंने किस चीज को पकड़ा होगा अपने जीवन में, बताइए, हरि नाम को। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले श्रीवास ठाकुर ने हरि नाम को पकड़ा, और उनके जो और भाई थे, चार भाई थे और उनके, तो उन सबके साथ श्रीवास ठाकुर अपने घर में हरि नाम संकीर्तन किया करते थे, और चारों भाई इतना अधिक उच्च स्वर से कीर्तन किया करते थे, क्योंकि हम लोग बाकी दुराचारी कार्य करने के लिए इतनी लज्जित नहीं होते, लेकिन जैसे तिलक लगाना है, हैंडशेव करना है, धोती पहनना है, कंठी डालना है, तो हमें क्या महसूस होती है, शर्म आती है। लेकिन सिगार अपने मुंह में रख के या गुटखा खा के ऐसे जहां मर्जी थूके उसमें शर्म नहीं आएगी। तो लेकिन जैसे ये सब आध्यात्मिक कार्य हम करते तो सोचते हमें बहुत शर्माते हैं, शर्म आती है, और वास्तव में देखा जाए असली जो आभूषण है यही हमारे है, सारे आभूषण। तो ये श्रीवास ठाकुर और उनके भाई इतने पक्के थे कृष्ण नाम के प्रति, चाहे दिन हो या रात हो कृष्ण नाम का जोर जोर से उच्चारण करते थे अपने घर में, इतना उच्चारण कि आस पास के लोग सब उनसे परेशान हो जाते थे। क्या हो जाते थे? प्रभुपाद ने कहा जब लोग हमसे परेशान होंगे तो सोचो प्रचार सफल हो रहा है। क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। जब तक कोई आपकी कंप्लेंट नहीं करता, आपको कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, तब तक सोचो कि प्रचार ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कोई अगेंस्ट हमारे जा रहा है, इसका मतलब है हमारा प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है और कृष्ण ऐसे कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं। तो उस समय आसपास के जो लोग थे नवद्वीप में, वो कहने लगे ये श्रीवास और उसके जो भाई हैं, इन्होंने तो आतंक मचाए रखा, आतंक मचाया है। जब हमें, हम चाहते ही सोए और सुबह उठकर काम में लग जाए, दिन भर पैसा कमाना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, लेकिन ये सारे रात भर क्या करते हैं, हमारी नींद उड़ा के रखते हैं। हाँ, तो ये बहुत निंदा करते थे, गालियां देते थे और चिल्लाते थे और सोचते थे शायद इनके घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, जिसके कारण ये चारों भाइयों को नींद नहीं आती उनके परिवार के साथ, इसलिए क्या 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 चिल्लाते हैं, हरे कृष्णा जोर से चिल्लाइए, हरे राम 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 हरे। तो वो सारे जो अभक्त हैं, नास्तिक हैं, कृष्ण नाम उनको विष के समान महसूस होता है, कड़वा लगता है। कैसे लगता है? जब कोई चीज कड़वी आपके मुंह में जाती है तो आपका मुंह टेढ़ा होता है कि नहीं? टेढ़ा होना मीन्स थोड़ा सा, जैसे व्यक्ति गालियां देता है, निंदापूर्ण वचन बोलता है तो उसका मुंह सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होकर बोलता है, गुस्से में आकर बोलता है। लेकिन जब सोचो आपके मुंह में रसगुल्ला जा रहा है, जिलेबी जा रही है, तो मुंह कैसे होता है? सीधा। तो वैसे ही है, कृष्ण नाम भक्तों के मुंह से निकलता है तो उनका मुख सीधा होता है। लेकिन अभक्त, जो अभक्तों को यही कृष्ण नाम वास्तव में कड़वा महसूस होता है। तो उनमें से एक ने कहा कि हम क्या करेंगे, ये जो श्रीवास है इसको राजा को, राजा मुस्लिम शासक थे उस समय, उन्होंने कहा राजा के हवाले इसको करते हैं। इसने क्योंकि राजा के जो सेवक है काजी आदि, वह उन्होंने कहा है कि जल्द ही राजा दो नाव भर भर के अपनी सेना भेजने वाला है। किसको पकड़ने के लिए? उन लोगों को पकड़ने के लिए जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। क्या करते हैं? अब सोचो यहाँ दिल्ली पुलिस कहे कि उन लोगों को पकड़ने के लिए उनकी वैंस आ रही है तिहाड़ जेल ले जाने के लिए, जो लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हम सब लोग सारी चीजें जो इस्कॉन से संबंधित है घर से पहले रात को बाहर निकाल देंगे, है ना, तो हम डर जाएंगे। तो श्रीवास ठाकुर डरे नहीं, लेकिन कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं हल्का सा भय उनके हृदय में आया था। भक्त के हृदय में भय नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अभय चरणार विंद जो कृष्ण है उनके चरणों की शरण ग्रहण की होती है। लेकिन भक्त के हृदय में भय आ भी जाए या आता है तो उसके पीछे कारण कौन है? कृष्ण है। कृष्ण इसलिए अपने भक्त के हृदय में भय डालते हैं ताकि उसका, उनका जो भक्त है और अधिक भगवान की शरण ग्रहण करे। तो ये सब लोग कहने लगे जल्दी ही वो नाव आने वाली है, दो सैनिकों से भरी हुई। एक ने कहा मैं उसका घर दिखाऊंगा, कहां है उसका घर, उस सैनिकों को लेकर ले जाऊंगा, पकड़ाऊंगा और उसको भेज दूंगा परमानेंटली पूरे परिवार के साथ यहां से, नवद्वीप से सारा आतंक खत्म हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जब भ्रमण कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन गंगा नदी के किनारे जा रहे थे। गंगा की ओर जाते जाते दूर से उन्होंने देखा कि गंगा के तट पर कई सारे गौवे गाय दौड़ते हुए आ रही है और वो ऊपर अपनी पूछ करके पानी पीने के लिए दौड़ रही है, इधर उधर घूम रही है। तो चैतन्य महाप्रभु केवल गायों को देखकर किसका स्मरण हो आया होगा? हाँ, हमें गाय को देखकर किसका स्मरण होता है? दूध का। किसका? क्योंकि हम मदर डेयरी का दूध पीते हैं, हमें लगता है ओरिजिनल काउ मिल्क होना चाहिए, कृष्ण का स्मरण नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे गायों को देखा, उनको स्मरण हुआ कि मैं स्वयं कौन हूं, कृष्ण हूं। और महाप्रभु चिल्लाने लगे, सही मुई मतलब मैं वही हूं, मैं वही हूं। अभी वो कृष्ण के भाव में आ गए और वहां से दौड़ पड़े। दौड़ते हुए भगवान की दौड़ किसके घर तक होती है? हा? भक्तों के घर तक। भगवान इसके उसके घर नहीं जाएंगे। तो कभी भी भगवान हमारे घर में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए घर का दरवाजा क्या होना चाहिए? लेकिन कलयुग के जीवों ने इतने दरवाजे डाले हुए हैं, घुसो तो पहले कुत्तों से सावधान। वहां से अंदर जाओ तो लोहे का एक गेट, वहां से अंदर जाओ घर में 1 2 3। मैं पंचशील में किसी को मिलने गया था कुछ एक महीना पहले, तो वो फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे। मैं पहुंचा, नीचे पहुंचा तो नीचे ही कैमराज लगे हुए हैं, उनको पता चला कि मैं आ गया हूं। और मुझे 8 दरवाजे क्रॉस करके उनके घर में प्रवेश करना पड़ा। तो ये कलयुग की स्थिति है। तो महाप्रभु या भगवान कभी भी तैयार है हमारे घर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन इतने सारे डोर सामने रखे हैं और उसमें से भी एक छोटा छिद्र होता है। भगवान देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है या गलत है। और उसके बाद हृदय में भी क्या है, बहुत सारे दरवाजे हमने रखे हैं, हृदय को भी हमने क्या कर दिया है, लॉक किया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु दौड़ पड़े उस नदी से और जाकर शिवास पंडित के घर पहुंचे। घर में पहुंचे तो दरवाजा क्या था, बंद था। और अंदर इनको थोड़ा सा भय था, तो इस्कॉन के भक्त जैसे भय होता है तो एक ही आरती गाते हैं, कौन सी, नमस्ते नरसिम्हाय प्रह्लाद लाद दाईने। इतनी फेमस आरती है कि इस्कॉन का छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या कहता है, नमस्ते नरसिम्हा है। हाँ मतलब नरसिम्हा देव हमारे बहुत प्रिय भगवान है, बच्चों के सबसे प्रिय। मतलब कोई भी चीज आप कार में निकलते हो बैठकर, तो भक्त लोग सबसे पहले कौन सी आरती गाएंगे, नरसिम्हा आरती। तो ऐसे जब इनको थोड़ा सा भय महसूस हुआ तो श्रीवास पंडित अपने घर में बैठकर नरसिम्हा का पूजन शुरू कर रहे थे। उसी समय चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पर लाथे मारने शुरू की, अरे श्रीवास, अरे श्रीवास, दरवाजा खोलो, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो साक्षात बाहर खड़ा है। अब ये श्रीवास पंडित ने देखा ये कहां से आवाज आ रही है, तो फिर उन्होंने जैसे दरवाजा खोला तो कौन थे साक्षात, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को समझने के लिए एक चीज हमारे हृदय में फिक्स हो जानी चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। जैसे उन्होंने डोर खोला तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास जिसका पूजन कर रहे हो, जिसका स्मरण कर रहे हो, जिसको तुमने हरि नाम का उच्चारण कर करके अद्वैत आचार्य ने और तुमने जिसको बुलाया इस संसार में, मैं साक्षात वही यहां तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम इतना शांत बैठे हो, उठो मेरी स्तुति करो, मेरा पूजन करो, आपके सारे परिवार नौकर सबको बुलाओ और मेरी कृपा को स्वीकार करो। तो सब आते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस समय अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म रूप, और वो सारे उनका पूजन आदि करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमल सबके सर पर रखते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से अपनी बाह्य अवस्था में आते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु आकर कहते, श्रीवास तुम्हें इतना भयभीत होने का काम नहीं है कि वो राजा के सैनिक आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उन सैनिकों को आने दो नाव भर भर के, यदि वो नाव आ गई तुम्हें ले जाने के लिए तो सबसे पहले कोई उस नाव में बैठेगा तो कौन बैठेगा, मैं बैठूंगा, कौन बैठूंगा, तो भगवान को इतनी चिंता है चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों, क्योंकि श्रीवास ठाकुर आदि पूर्ण रूपेण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित थे और कृष्ण नाम के लिए परम प्रीति उनके हृदय में थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उस नाव को आने दो, सबसे पहले कोई बैठेगा तो मैं बैठूंगा और वहां चला जाऊंगा उस राजा मुस्लिम शासक के पास, और वहां जाकर वो मुझे कुछ पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगा कि बुलाओ तुम्हारे सारे काजी मुल्ला सबको बुलाओ और आपके शास्त्रों को उनको बोलो आपके शास्त्र खोलो, और उन शास्त्रों के द्वारा उनको बोलूंगा कि जितने भी आपके हाथी घोड़े सब है उनको भी बुलाओ, और आपके इन काजी और मुल्लाओं की जिनकी तुम आप बात सुनते हो, वो मुस्लिम शासक जो ये कीर्तन को बंद करना चाह रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उसको कहूंगा कि आपके शास्त्रों को पढ़कर किसको रुलाओ, इन जितने भी सभा में हैं उनको रुलाओ या फिर ये पशु पक्षी आदियों को रुलाओ, और यदि वो नहीं रुला पाएंगे तो उस मुस्लिम शासक को मैं कहूंगा कि क्या करो इन सबको यहां से हटा दो और मैं रुला कर दिखाऊंगा इन्हें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास फिर तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो अभी तुम्हें दिखाता हूं। तो श्रीवास ठाकुर के जो भाई थे नलिन पंडित, उनकी एक छोटी सी कन्या थी 4 साल की जिनका नाम था नारायणी। क्या नाम था? नारायणी। और वो सामने ही थी बेटी, सामने खड़ी थी। नारायणी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखा उस नारायणी बालिका की ओर और उसको कहा नारायणी कृष्ण बलिकान, हे नारायणी कृष्ण बोलकर क्या करो, रो, मीन्स कृष्ण के लिए रो पड़ो। जैसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो 4 साल की जो बालिका है तुरंत कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्या करती है, रो पड़ती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के हृदय का जो भय है उसका निवारण करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वास्तव में श्रीवास पंडित के पति बहुत अधिक ऋणित है, क्योंकि श्रीवास पंडित ऐसे आचार्य थे, ऐसे भक्त थे कि जिनका जीवन, जिनका परिवार, जिनका ग्रह सब कुछ चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए समर्पित था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मानस देह जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। जीवन की परम सिद्धि क्या है, हमारा मन, हमारा देह, हमारा घर, हमारे परिवार, ये सारी चीजें किसकी सेवा में यूज होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा में। यदि ये सारी चीजें भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं होगी तो ये सारी चीजें हमारे महादुख की कारण बनेंगी। जो चीजें कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं होगी वो चीज कभी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान नहीं कर सकती, एक ना एक दिन वो हमें महान दुख का कारण हमारे जीवन में बनेगी। तो ऐसे जो श्रीवास पंडित हैं उनका हर चीज चैतन्य महाप्रभु के सेवा के लिए थी। इवन उनका जो ग्रह था, जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए थे तो सारे भक्तों ने कहा कि आप हमारे लीडर बनो, और लीडर बन के क्या करो, हम सब मिलकर कीर्तन करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर ने कहा कि कीर्तन हमारे घर में करो। हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में 1 साल के लिए संन्यास ग्रहण करने से पहले 1 साल के लिए हर रात्रि में कीर्तन किया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जी एक बार कीर्तन करने के लिए आए और कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। महाप्रभु ने कहा मुझे लगता है कि आज मुझे इस कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, आज कुछ तो मिसिंग है। तो चैतन्य महाप्रभु को सारे भक्त कहते नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते कोई अभक्त, कुछ तो घटना घटित हुई है जिसके कारण मुझे आज आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में। तो सारे भक्तों ने कहा नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं हुआ यहाँ। फिर से चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे और फिर चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते रुक गए कीर्तन में, कहा नहीं नहीं मुझे लगता है कि कुछ घटित हुआ है। तो उस समय क्या हुआ था, जो श्रीवास ठाकुर है उनके घर में उनका जो एक ही पुत्र था उस पुत्र ने अपना शरीर त्याग कर दिया था, शरीर छोड़ा था अंतपुर में अंदर घर में, और घर की जितनी भी स्त्रियां थी वो उस बालक के देह के पास जोर जोर से क्रंदन कर रही थी, रोते जा रहे थे, और बाहर आंगन में चैतन्य महाप्रभु अपने बहुत सारे भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम।
तो जब कीर्तन कर रहे थे तो अंदर श्रीवास ठाकुर गए और श्रीवास ठाकुर ने देखा कि ये सारी स्त्रियां घर की रो रही हैं। उनको ये भी पता चला कि किसके पुत्र ने शरीर छोड़ा है, मेरे। लेकिन उनको रेंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा कितना भाग्यशाली समय है कि जिस घर में कौन नृत्य कर रहे हैं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के नामों का उच्चारण हो रहा हो, तो इससे बढ़कर दिव्य स्थान कौन सा हो सकता है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम था, श्रीवास ठाकुर ने उन सारी स्त्रियों को कहा कि आपके आवाज से चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब यदि बाधा आएगी तो मैं क्या करूंगा, अभी गंगा चला जाऊंगा और गंगा में जाकर अपने शरीर को इसी क्षण खत्म कर डालूंगा। इतना चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम और सेवा की भावना थी। तो इस प्रकार से जब श्रीवास ठाकुर ने उन स्त्रियों को कहा, स्त्रिया बिल्कुल डर गई और उन्होंने अपनी आवाज बिल्कुल ही धीमी कर दी। और बाहर चैतन्य महाप्रभु फिर तीसरी बार नाचते हुए कहा कि मुझे लग रहा है घर में कुछ अघटित घटित हो गया है। तो किसी भक्त ने कहा, प्रभु अंदर क्या हो गया है, श्रीवास पंडित के जो पुत्र है उन्होंने शरीर त्यागा है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चैतन्य भागवत में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। रोते रोते चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के पास गए, उनका आलिंगन करते हुए कहा कि हे श्रीवास, तुम्हारा कितना मेरे प्रति प्रेम है, किस प्रेम के कारण तुम मुझे थोड़ा भी दुख प्रदान नहीं करना चाहते हो। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हुए रोने लगे और चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का हाथ पकड़कर उस स्थान में ले गए और जाकर देखते हैं कि चारों ओर सारी स्त्रियां रो रही हैं। और महाप्रभु जाकर उस बालक को कहते हैं, हे बालक उठो। जो मृत बालक है वो उठ के बैठ जाता है, सोचो, और उठकर बैठता है और वो कहता है कि प्रभु आपकी आज्ञा से ही मैं इस घर में आया था और मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आपकी आज्ञा से ही इस घर से मैं वापस जा रहा हूं और वहां जा रहा हूं जहां आपने मुझे भेजने की सोची है। इस प्रकार से काफी लंबी चर्चा होती है उस बालक के साथ और फिर वो बालक फिर से अपने पूर्ववत एक प्रकार से मर जाता है। अब इस चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्त उनके शरीर का अंतिम क्रिया करते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर श्रीवास पंडित को कहते हैं, श्रीवास आज से तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दो पुत्र हैं। कौन कौन है दो पुत्र, एक मैं और दूसरा है नित्यानंद प्रभु, हम तुम्हारे परमानेंट पुत्र हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना प्रेम श्रीवास पंडित का है कि मेरे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और उसमें वो दुखी नहीं है। इसलिए भगवान की सेवा की विशेषता क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा सेवाय दुख कहय जत सहित परम सुख। हे कृष्णा, आपकी सेवा में चाहे जितना भी कष्ट मिलता है वो कष्ट कष्ट महसूस नहीं होता है, वो वास्तव में क्या महसूस होता है, आनंद। अभी हम उस दिन गोवर्धन परिक्रमा गए थे, तो गोवर्धन परिक्रमा आप कहोगे यहां से आपको इस्कॉन दिल्ली मंदिर तक पैदल जाना है, कितने लोग हाथ ऊपर खड़े करेंगे पैदल जाने के लिए, मुश्किल है। आप ऐसे ही कर रहे हो हाथ खड़े, तो मतलब देखा जाए गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर आपको धूप में चलना है, पांव में कोई जूते नहीं है, आनंद है क्या उसमें, कुछ नहीं है। लेकिन उसका संबंध कृष्ण की सेवा से है, तो जब कृष्ण की इस प्रकार से सेवा होती है वो शारीरिक कष्ट होता भी है लेकिन उस कष्ट में क्या छुपा हुआ है, एक दिव्य आनंद है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते तुम्हारा सेवा है दुख का है जत सहित परम सुख। हाँ, इस संसार में हमें तो कितने सारे कष्टों को झेलना पड़ता है और उस कष्टों से और कष्ट मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो तपस्या है वो हमारे सुख का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है और तपस्या को स्वीकार करना, और सबसे बड़ी तपस्या क्या है, भक्तों के संग में आकर कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा,
जोर से
हरे राम 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 हरे।
तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रीवास ठाकुर का प्रेम था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कैसे मैं इनको छोड़कर चला जाऊं, कैसे मैं सन्यास ग्रहण करूं। चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए। और जो भी व्यक्ति श्रीवास ठाकुर की सेवा में था या श्रीवास ठाकुर से प्रेम रखता था, चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रति अपना जो कृपा है उसका वर्षाव किया है। हाँ, श्रीवास ठाकुर के घर के सामने ही एक मुस्लिम टेलर था। क्या था? टेलर, दर्जी था। किसके कपड़े सिलाता था? श्रीवास ठाकुर के। एक भक्त के कपड़े सिला रहा था, और वो मुस्लिम टेलर, उसने जब देखा चैतन्य महाप्रभु उस वहां अंदर जो टेंपल था उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, इसको देखकर वो टेलर ऊंचे स्थान से देखा उसने, और देखते ही वो नाचने लगा, गदगद होकर रोने लगा। और उसने भी कहा, जोर से कहा, मैंने देखा। क्या बोला उसने?
मैंने देखा।
जोर से बोलिए।
मैंने देखा।
तो उस टेलर ने देखा था। आपने क्या देखा यहाँ? तो टेलर ने देखा चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में, और देखते ही उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, और चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर अपनी कृपा का वर्षाव किया। कवि कर्णपुर कहते हैं कि उस टेलर जो दर्जी था, जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ और उसकी जिह्वा चैतन्य महाप्रभु को देखकर कृष्ण कृष्ण कह रही थी। क्या कह रहे थे? जोर से और जोर से। तो कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में आपकी कृपा से इसकी जिह्वा कृष्ण नाम का उच्चारण कर रही है। हाँ, तो जिसकी जिह्वा वास्तव में भगवान के नाम का उच्चारण करती है, देवतागण सोचते ये जीव बहुत पूजनीय है। देवतागण सोचते कि कब हमें इस स्वर्ग के भौतिक ऐश्वर्य से छुटकारा मिले, कब हम इस पृथ्वी में आकर चैतन्य चंद्र के भक्तों के संग में हाथ ऊपर करते हुए और जीवा से किस नाम का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवा में जो रत्न है, हाँ, जीवा की शोभा क्या है, अग्र भाग में किसको रखो? कृष्ण नाम को रखो, इस हरे कृष्ण महामंत्र को रखो। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर के कारण उनके ऊपर कृपा होती है। इतना ही नहीं, श्रीवास ठाकुर के घर में एक सेविका थी, उसका नाम क्या था? दुखी। तो हम सब लोग दुखी हैं। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो हमी बड़ो दुखी। ये लाइन हमें याद रहने चाहिए हमेशा। सुखी कौन है? कौन है? नित्यानंद प्रभु। इसलिए उनका नाम क्या है? नित्य आनंद। जो नित्य आनंद में रहते हैं वो सुखी हैं। हम नित्य आनंद नहीं है, हम नित्य आनंद चाहते हैं। हाँ, वास्तव में जो ये सेमिनार है ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो हम वास्तव में नित्यानंद प्रभु की खोज कर रहे हैं उससे, है ना, आनंद की खोज। और आनंद कौन है? नित्यानंद प्रभु है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु सुखी हैं और हम दुखी हैं। तो सारे भक्त वह कीर्तन में आते थे, नाचते थे, गाते थे, श्रवण करते थे, गंगा स्नान आदि करते थे, और घर में स्नान भी करते थे सारे भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन, सारे भक्त नाच रहे थे, चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में बैठ गए। श्रीवास पंडित आकर उनके पास बैठे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे वहां दूर से मुझे बहुत सारे गढ़े नजर आ रहे पानी के, और वो बिल्कुल एक लाइन में एक जैसे रखे, बिल्कुल सिस्टमैटिक। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास बताओ इन घड़ों को किसने रखा है इतना सुशोभित करके, और कौन ये पानी लेके आता है? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं, हमारी जो सेविका है, हाँ, वो लेके आती है भक्तों के लिए पानी। हाँ, महाप्रभु ने पूछा, बताओ उसका नाम क्या है? तो क्या नाम बोला भक्तों ने? उन्होंने दुखी। चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए। महाप्रभु इसलिए दुखी हो गए, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कैसे संभव है। बल्कि वो जो दुखी है श्री रोज, वो कोई सोचती नहीं थी कि मेरे लिए ये बोझ हो गई है सेवा। सोचो आपको रोज प्रसाद बांटने की सेवा साल भर करनी है और सबसे आखिर में प्रसाद पाना है, आप सुखी रहेंगे? हाँ, दुखी रहेंगे पूरे साल भर। हाँ, हम कैसे छुटकारा मिले इस सेवा से, कौन नया व्यक्ति आ रहा है उसके हाथ में पकड़ा दू ये सेवा। तो वो जो सेविका थी, वो स्त्री थी, उसने कभी सोचा भी नहीं, उसने सोचा ये सेवा मुझे मिली है ये मेरा परम सौभाग्य है, चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का सेवा। हाँ, तो वहां वो जब गुजरती थी पानी लाते लाते देखती थी भक्त लोग नाच रहे गा रहे, ये कीर्तन आदि को देखकर कीर्तन को सुनकर उस दुखी के आंखों से आंसू की धारा बहती थी, उसके हृदय में कृष्ण के लिए अत्यधिक प्रेम उमड़ गया था सेवा करने से। हाँ, सेवा से ही प्रेम हो जाता है। तो जब महाप्रभु ने कहा इसका नाम दुखी नहीं होना चाहिए, कैसे संभव है कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करने से कोई दुखी हो जाए, महाप्रभु ने कहा आज से इसका नाम क्या होगा, सुखी। हाँ, तो वास्तव में वो नामकरण चैतन्य महाप्रभु करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कम लोगों को नाम दिया है, नाम चेंज किया है, आप सोचो कितने भाग्यशाली हैं। एक तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया, दूसरा किसको दिया, सनातन गोस्वामी को दिया, और किसको दिया, इस दुखी को दिया, और एक थे कवि कर्णपुर, हाँ, शिवानंद सेन के पुत्र थे। हाँ, उनकी उनकी जब उनकी वाइफ जब महाप्रभु को प्रणाम करने आई गर्भवती थी, चैतन्य महाप्रभु ने पहले उनका नाम बोला, और वो महाप्रभु गए उनके घर उन बालक को देखने के लिए, वो बालक के मुंह में चैतन्य महाप्रभु ने अपना पाव का अंगूठा दे दिया, जिसके कारण इतना इतना वो गुणगान करने लगा कृष्ण का अपने छोटे आयु से। और भी दो डिवोटीज थे, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु ने रखा था, एक थे नरोत्तम दास ठाकुर और दूसरे थे श्रीनिवास आचार्य। कौन थे, श्रीनिवास आचार्य, और ये कौन थी, ये स्त्री थी जिनका नाम क्या रखा, सुखी। तो इस प्रकार से हमारा नामकरण भी चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें सरलता से चैतन्य महाप्रभु और उनकी जो उनके भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना होगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर के प्रति इतना अधिक उनका प्रेम था, और शिवास ठाकुर कुछ और अपने जीवन में नहीं करते थे, अपने भाइयों के साथ मिलकर कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण की सेवा, इसके अलावा उनके जीवन में उनको कुछ पता नहीं था। फाइनली चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से संन्यास लेकर आए कुमारहट्टा में, जिनसे मिले तो उनको कहा, शिवास मैं देखता हूँ तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, चार चार भाई और इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते हो, इससे अच्छा ही संन्यास ले लो। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, और कुछ काम वगैरह करते हो कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, फिर कैसे अपनी उपजीविका निभाते हो। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर कहते हैं आपका नाम संकीर्तन करते हुए, और यदि कुछ भोजन के लिए मेरे पास ना भी हो तो मैं केवल क्या करता हूँ, इंतजार करता हूँ 3 दिन का या 3 बार। वो उन्होंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर ने 3 बार अपने हाथ से ताली बजाई, कितनी बार, आप भी बजाइए, 1 2 3। तो महाप्रभु का प्रश्न था कि आप उपजीविका कैसे चलाते हो, तो ये बोले नहीं, लेकिन इन्होंने 3 बार ताली बजाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे ये क्या हुआ उत्तर, तो उन्होंने कहा मैं तो 3 दिन देखता हूँ, आपकी कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हो जाए उसको स्वीकार करता हूँ, आज तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ है कि मेरे ग्रह में भोजन आदि के लिए कुछ कमी आ गई हो, और जिस दिन नहीं होगा 3रे दिन बाद 4थे दिन पूरे परिवार के साथ निकलूंगा, गले में घड़ा बांधूंगा, क्या बांधूंगा, और कहां जंप लगाऊंगा, गंगा में। चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, कहा श्रीवास इतना अधिक फेथ है मेरे भक्ति में, मेरे नाम संकीर्तन में। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं लक्ष्मी जदि भिक्षा करे नगरे नगरे नहीं हाँ जदि कदाचित वा लक्ष्मी भिक्षा करे तथापि दारिद्र नहीं बत तोर घरे। यदि कदाचित लक्ष्मी को भी भीख मांगनी पड़े हाँ लेकिन दारिद्र तुम्हारे घर में आ नहीं सकता। फिर महाप्रभु ने कहा इसलिए तो मैंने एक श्लोक भगवत गीता में बोला है अनन्या चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो तुम्हारे जैसा भक्त अनन्य भावना से मेरा भजन में नियुक्त है सेवा में नियुक्त है तो मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इनके प्रति अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं और वास्तव में श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं जिनके पास कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना थी और विशेष रूप से उनका अनुराग कृष्ण नाम संकीर्तन के लिए था। और इनका घर वही स्थान है जिस प्रकार से आचार्य कहते कि कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के द्वारा लेकिन प्रकट होकर कहां चले गए वृंदावन नंदा और यशोदा के पास। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के द्वारा लेकिन सारी जो लीलाएं हैं भगवान ने मथुरा में लीलाएं नहीं की जन्म लेते ही वो ब्रज में गए और अपनी सारी लीलाओं का संपादन किया। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी जो संकीर्तन लीला है वो श्रीवास ठाकुर के घर में श्रीवास ठाकुर के आंगन में की है। तो आज उनका आविर्भाव है तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए आज कि हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम भी कृष्ण के नामों का कीर्तन कर सके और उनके जैसा ही शरणागति का जो भाव है श्रील प्रभुपाद और उनके भक्तों की सेवा या सहायता हेतु हमारे हृदय में जागृत हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीवास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी के प्रश्न या समीक्षा हो
यस माता जी आप बताइए।
जैसे भी आपने बताया कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था तो वो बहुत भाग्यशाली थे लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किसी भी क्षण हमारा जाना हो सकता है तो वो लॉलियम हमारे अंदर किस तरह से पैदा हो सकता है कि हमें इस चीज का एहसास हो जाए।
तो प्रभुपाद कहते हैं तत्र लवल्यम मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। ये जो लवल है भक्ति के लिए ये करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं होगा। उन भक्तों का संग करना होगा जिनके अंदर इस प्रकार का लवल्य की भावना है। इसलिए हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। सर्वाधिक लवल्य किस में है प्रभुपाद में है। उनके ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और नियमित रूप से भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन में लगते हैं तो वह लवल्य की भावना जागृत होती है। साधु संग से ही ये लालसा आती है और कोई उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद का संग हमें मिलता है ग्रंथों से इसलिए नियमित पढ़ते रहना चाहिए हमें। जैसे प्रभुपाद ने कहा मुझे दुख होता है हाँ जब मैं देखता हूँ मैंने रात रात जग कर इन ग्रंथों का अनुवाद किया है कोई बेचने के लिए सेल करने के लिए नहीं हाँ पढ़ने के लिए और लेकिन मुझे दुख होता है कि मेरे भक्त लोग मेरे ग्रंथों को जितनी मात्रा में पढ़ना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पढ़ते। इसलिए बहुत आवश्यक है इन शिक्षाओं को समझने के लिए ग्रंथों को हम पढ़े समझ में आए या ना आए पढ़ते रहने से धीरे धीरे समझ में आता है। पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और समझ बढ़ती है। ठीक है आ? ठीक है, टाइम हो गया। तो भी ब्रेक लग गया ना, एक स्पीड ब्रेकर तो मुश्किल होता है फिर आपको ना। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
प्रचार सेवा कैसे
हुई? प्रभु जी का प्रश्न है, प्रचार की सेवा कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका उत्तर प्रभु जी अच्छे से दे सकते हैं। वही है कि प्रचार एक ऐसी चीज है जो भगवान के धाम में नहीं करने को मिलेगी, है ना। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। यदि एक बार आप मेरे धाम में आओगे तो वापस नहीं जा सकते। तो कोई कहेगा वृंदावन जाते फिर भी हम वापस आते, तो इसलिए वापस आते भक्त लोग कि आकर क्या करना है, उनको प्रचार करना है और हमें भगवान का प्रिय बनना चाहते। हम सबसे जो बेस्ट व्यक्ति है उसका प्रिय बनना चाहते हैं, नहीं तो वैसे ही सबसे बेस्ट कौन है? कृष्ण है। तो उनका प्रिय कैसे बन सकते हैं? जो उनके जो उनको जो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है वो करने से, और वो क्या है? प्रचार करने से। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भगवान को अपने जीवन में सर्वाधिक हमें लाना है, हाँ तो क्या करना होगा? हमें दूसरों को वितरण करने का प्रयास करना होगा, दूसरों का हाथ पकड़ पकड़ के कृष्ण के पास लाने का प्रयास करना होगा, तो हम कृष्ण के अत्यधिक प्रिय बनते हैं। हाँ, चाहे उसमें हमारा मन लगे या ना लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, हमें थोड़ी तपस्या या कष्ट हो, तो भी हमें ये प्रयास करना चाहिए अपनी पूर्ण शक्ति डालकर कि किस प्रकार से अधिक दूसरों तक ये कृष्ण भावना हम दे। श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं, 70 साल की आयु में प्रभुपाद सात समुद्र के परे जाते हैं प्रचार करने के लिए, दूसरों को कृष्ण भावना देने के लिए। हमें तो उतना है नहीं, हमें जो भी जिससे भी हम मिलते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हाँ कोई भी व्यक्ति है जिनसे हम जिसके संपर्क में हम आ जाते हैं, उसको हमें कृष्ण के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करते एंडेवर करते हैं तो कृष्ण जैसे उस भक्त का प्रयास देखते हैं, कृष्ण उसको बुद्धि सामर्थ्य और सब प्रकार की शक्ति और सुविधा देना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना होगा प्रचार करने के लिए, और फिर जैसे हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण बाकी चीजें हमारे लिए दे देंगे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, जब उनके पिता भक्तिनाथ ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सब लोग इस संसार से चले गए थे, वो मायापुर में रहते थे, उन्होंने कहा अभी मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो इस स्वप्न में आते हैं सारे लोग, उन्होंने कहा आप उठो और निकलो बाहर। हाँ, कई बार हम सोचते कि अरे मुझे तो कुछ आता नहीं, क्या बताओ किसको, कौन सुनेगा मेरी। नहीं, हम जो भी हमें पता है, प्रचार मीन्स जो भी हमने सीखा है, थोड़ा बहुत समझा है, जाकर क्या करो, दूसरों का बताने का प्रयास करो। इतना करने से कृष्ण हमें बुद्धि प्रदान करते हैं स्वाभाविक रूप से हमारे प्रयास को देखकर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कहते हैं आचार्यगण कि आप निकलो, उन्होंने कहा मेरे पास ना कॉन्टेक्ट है ना लोग हैं, उन्होंने कहा बाहर निकलो और प्रयास करो, हम सारी व्यवस्था करेंगे। तो उसी प्रकार से हमें भी हर समय इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे श्रीवास ठाकुर थे, वो हमेशा सोचा करते थे कि कैसे हमारा गोत्र की वृद्धि होगी। गोत्र मीन्स फैमिली, जैसे लगता है ना व्यक्ति को अरे परिवार बड़ा हो जाना चाहिए, तो अभी शादी हो गई, परिवार क्या होना चाहिए? विस्तार होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। तो वैसे श्रीवास ठाकुर भी सोचते थे, हमेशा कहा करते थे कि ये जो गोत्र है, ये फैमिली है, उसका विस्तार हो जाना चाहिए, और विस्तार मतलब दूसरों को प्रेरित करें हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए, तो फिर हम कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। उसके लिए हम सीख सकते हैं अलग अलग भक्तों से किस प्रकार से हमें करना चाहिए प्रचार आदि। और एक वे हैं, यहाँ प्रोग्राम्स हैं, लोगों को इनवाइट करें,
उनसे प्रेम के संबंध बनाए और उनको प्रेरित करें ताकि वो कृष्ण भक्ति अपने जीवन में ले, तो एक उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
माताजी का प्रिय प्रश्न। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों है ना, बाकी इतने सारे भगवान के नाम हैं, मंत्र हैं, तो हम हमेशा सुनते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं कि आपको एक विशेष बीमारी हुई है तब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, लिख के देता है कागज पर, और आप फिर मेडिकल स्टोर में जाते हो, वहाँ दुकान वाले को दिखाते हो, केमिस्ट को, ये मेडिसिन है, यही चाहिए मुझे, इतनी एमजी की चाहिए, क्या कहते एमजी, उतनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जो भी प्रिस्क्राइब किया है वही चाहिए और वही कंपनी की चाहिए, कई बार बहुत होता है ना, स्ट्रिक्ट होता है, यही ब्रांड चाहिए, कोई और ब्रांड नहीं। तो वैसे ही है कृष्ण नाम। अब आप कोई पागल व्यक्ति कहेगा डॉक्टर ने कहा मेडिसिन लिख के दिए, मेडिसिन चलो केमिस्ट, ओ इतनी सारी दवाइयां हैं, कोई भी दे दो सब चलेगी, मुझे चलेगी नहीं, मरोगे खाकर। तो नहीं, जो डॉक्टर आपको, इसलिए सबसे पहले पता होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मैं बीमार हूं, क्या समझना चाहिए, हाँ ये जानना चाहिए कि मैं इस संसार में दुखी हूं, ये संसार मेरे सुख के लिए नहीं है, ये संसार मेरे लिए नहीं बनाया गया है, एक ना एक दिन इस संसार से वृद्धावस्था का कष्ट झेलते झेलते मुझे मरना है। सबसे पहले जानना है कि मैं बीमार हूं, तब आप किसको ढूंढोगे, डॉक्टर को ढूंढोगे। तो उसी प्रकार है, डॉक्टर को ढूंढोगे तो अल्टीमेट डॉक्टर कौन है, कृष्ण है, कौन है, डॉक्टर गुरु भी कहलाते हैं, कृष्ण है। कृष्ण क्या करते हैं, डॉक्टर है, उनको बीमारी आपकी पता है, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो किसी पेपर में लिखते हैं, तो पेपर क्या है, शास्त्र है, क्या है पेपर, शास्त्र है, शास्त्र कोई और नहीं दे सकता, हाँ शास्त्र भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, इसलिए उसको कहते हैं अपौरुषेय ज्ञान। हाँ, तो भगवान ने द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है शास्त्र, और शास्त्रों में जो लिखा है और वही स्वीकार करना चाहिए। तो शास्त्रों में तो कौन से ग्रंथ, ऐसे कई सारे ग्रंथों में लिखा है, बहुत सारे स्थानों में भगवान के अलग अलग नामों का वर्णन आया है, लेकिन विशेष रूप से हमें प्रिस्क्राइब किया है कली संतरण उपनिषद, बैटरी खत्म हो गई, तो कली संतरण उपनिषद में ये वर्णन आया है, जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और नारद मुनि ने जब कलियुगा के जीवों का ये जो स्थिति है, कष्टमय स्थिति है, उसको जब देखा तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते कि बताइए हमें कि संसारिक कष्टों में फंसे हुए जीवों के लिए परम सिद्धि और सरलता से भगवत प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। तो ब्रह्मा तुरंत भगवान ने प्रिस्क्राइब किया हुआ बुक खोलते हैं, कली संतरण उपनिषद, कौन सा उपनिषद, हाँ एक शॉर्ट उपनिषद है, तो कली के कलियुगा के लिए कली संतरण उपनिषद, और उसमें क्या कहा गया है, हिरण्यगर्भ उवाच, अभी ब्रह्मा उनको किसी माता ने जन्म नहीं दिया है, भगवान के नाभि से कमल निकला उसके ऊपर उनका जन्म हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक कौन बोल सकता है, ब्रह्मा जी बोल सकते हैं, उनकी माता भी कृष्ण है पिता भी कृष्ण है, तो वो बोलते हैं, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया है वो बताया उन्हें, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि ये कली युग के कलमशों का नाश करने के लिए षोडशकम नाम नाम 16 अक्षरों का ये मंत्र, ना तो परतर उपाय और कोई उपाय नहीं है। और कहा सर्व वेदेषु दृश्यते, वेदों में चार वेद, और वेद का दूसरा अर्थ है ज्ञान, जितने भी ज्ञानमय शास्त्र आदि हैं सब में इसी चीज की इसी महिमा का वर्णन किया है। ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और फिर उन्होंने बोला कि क्या लिखा है आगे, हरे कृष्णा, जोर से हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। उन्होंने ये सुनाया, इसलिए हमें हाँ ये अधिकृत रूप से ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार करना चाहिए। भगवान के कई सारे नाम हैं, हाँ ध्रुवा ने चांट किया था क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रहलाद चांट करते थे ओम नमो नारायणाय। तो ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन थे, लेकिन कलियुगा के लिए कृष्ण नाम का वर्णन। इवन देवता गण भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा बोले चतुर मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, चार मुखों से ब्रह्मा भी बोलते रहते हैं, पंच मुखे महादेव राम राम हरे हरे, पांच मुखों से शिवजी महादेव, देवों के देव है ना, कौन है महादेव, वो भी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनकी पार्वती देवी उनकी पत्नी कहते, अरे मैंने तो सारे जगत को देखा है आपके नामों का उच्चारण करते, आप माला हाथ में लेकर क्या बड़बड़ते रहते हो। तो शिव जी क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिव जी पार्वती देवी इंद्र चंद्र वरुण जितने भी देवता गण है, यमराज भी हाँ कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए ये शास्त्रों में दिया गया है और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए यथोचित रूप से। हरे कृष्ण, ठीक है, मुझे लग रहा है अभी विराम देना चाहिए।